Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandiji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharvediya Kaivalya Upanishad ka 8th mantra hai. Uchcharan kar le. स ब्रह्मा स शिव सेन्द्रः सो अक्षरः परम स्वराट स एष विष्णु स प्राणः स कालो अग्नि स चंद्रमः स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्र सोऽक्षरः परम स्वराट् स विश्व एव विष्णु स प्राणः स कालो अग्नि स चन्द्रमः तो साधन बताया. अब साधन से साध्य जो अपने जीवन का लक्ष्य है उसका प्रतिपादन किया आपने. पांचवे छठवे मंत्र में श्रवण किया कि किस प्रकार से बैठना है, कहाँ बैठना है. विविक्त देश, पवित्र देश, एकांत हो, शांत हो. सम शिरो ग्रीव, शीर गर्दन और मेरुदंड सीधे होने चाहिए. मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा एक रेखा. इसके बाद में हृदय रूपी कमल पर उमा सहाय सगुण साकार परमात्मा का चिंतन. ध्यात्वा मुनि गच्छति भूत योनिम समस्त साक्षिम तमसः प्रस्ताद. तमस अविद्या से जो परे है उसका ध्यान करके मुनि परम तत्व को उपलब्ध हो जाता है. अब उसी का महिमा मंडन कर रहे जो आपने श्रवण किया सात तक उसी का महिमा मंडन. स ब्रह्मा स विष्णु, वही जो है ना ब्रह्मा है. ब्रह्मा कैसे हुआ? रजो गुण को स्वीकार किया तो ब्रह्मा बन गया सृष्टिकर्ता. स शिव और वही अविनाशी परमात्मा तमस को स्वीकार करके शिव होकर संहार करता. स एव विष्णु और वही सत्व गुण को स्वीकार करके विष्णु बनकर जगत का पालन करता हुआ. सेन्द्र और वही शासनादि गुणों को लेकर इंद्र रूप से शासन कर रहा. सो अक्षर परम स्वराट, वह अक्षर है. अक्षर मतलब अविनाशी. न क्षरत इति अक्षर और क्षरत इति क्षर, जो विनाशशील उसको क्षर कहते हैं. क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते. इस शरीर में सब कुछ क्षर है. क्षर मतलब क्षरण हो रहा धीरे धीरे. एक ऐसी चीज है जिसको कुटस्थ कहते हैं. जिस कुटस्थ का क्षरण नहीं होता इसलिए उसका नाम अक्षर है. तो अक्षर वह परम तत्व है. परम कार्य सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च. स्वराट का अर्थ है स्वयं प्रकाश. स्व है राज है. राज शब्द से राट बना. राद्री दीप्तौ धातु है तो राद्री दीप्तौ का व्याकरण से भ्रष्ट भ्रष्ट सूत लगकर के स्तुत्वादि होकर जस्त होकर ये जो है बना राट. प्रथमा के एक वचन का राट है स्वराट. स्वयं प्रकाश है. स ए विष्णु वही विष्णु पालन करता, स प्राण स कालो अध्यात्म में वही प्राण है। प्राण मतलब जिसके सत्ता स्फूर्ति से ये हमारे प्राण सत्तावान हो रहे, क्रिया कर रहे, इसी का नाम है प्राण। वह प्राणस्य प्राण, प्राण का प्राण है। सत्य सत्यम, सत्य का भी सत्य है, नित्यों का नित्य है। स काल अग्नि स चंद्रमा वही काल है। काल क्यों है? बहाने अनेक बन जाते हैं पर परमात्मा ही काल रूप से जगत का निरोध करता है। अग्नि स चंद्रमा वही अग्नि वही चंद्रमा है। इसके विषय में, काल के विषय में एक बढ़िया बहुत लंबी कथा है, आपको मैं 2 मिनट में सुना देता हूं। काल के विषय में कि परमात्मा काल कैसे, उज्जैन के जो बहुत बड़े पराक्रमी राजा, क्या नाम राजा का था है? हाँ, विक्रमादित्य। तो वे गुप्त रूप से रात्रि के समय वेश बदल करके अपने प्रजा के समाचार को लेते थे। तो विक्रमादित्य रात को छिप कर अपना नगर में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक अजीबोगरीब चौंकाने वाला घटना देखा कि एक आदमी हाथ में तलवार लिया और तलवार लेकर सोते हुए जो है ना पति पत्नी का वध कर माल लेकर वहां से भाग गया। विक्रमादित्य छिप कर उसके पीछे पीछे, देखे कहा जाता, जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद वहां वो देखते हैं पेड़ पर चढ़ गया। वहां चढ़ने के बाद विक्रमादित्य देखे अब क्या करता है। थोड़ी देर में देखते हैं वह आदमी भालू बन गया। ये क्या आदमी भालू, भालू बन करके राहगीर जा रहे थे। राहगीरों को बड़ा परेशान करता है वह भालू। विक्रमादित्य सारी घटना छिप कर देख रहे हैं। सारे राहगीर रास्ता छोड़कर इधर उधर भाग गए। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जंगली हाथियों का झुंड आ रहा। तो राहगीर यदि नहीं भागते तो जंगली हाथियों के द्वारा मारे जाते। कहे कि अच्छा हुआ इसने तंग किया तो सब बच गए। अब आगे अगर देखते भालू मिट्टी में लोट पोट करके फिर भयंकर सांप बन गया। सांप बन करके अब वह नदी किनारे गया। उधर से व्यापारी आ रहे थे। वह सांप नाव में टूटा कूद पड़ा। नाव का जो एक होता है ना, एक तरफ सब भगे, वजन पड़ा, सब नाव वाले डूब गए नदी में। सांप वहां से बाहर आ गए। ये क्या है तमाशा। थोड़ी देर के बाद देखते सांप आगे चल करके मिट्टी में लेट करके स्त्री बन गया। बहुत सुंदर स्त्री। उधर से 2 राहगीर आ रहे, दोनों सगे भाई थे। वह स्त्री कुआं पर बैठी है चुपचाप। राहगीरों ने कहा भाई तू कौन है, कहां जाना है? कहा मुझे पता नहीं, बचपन में हमारे माता पिता का शरीर छूट गया, मैं ऐसे बैठी, जोर से मुझे भूख प्यास लगी। और उन्होंने कहा अच्छी बात, मैं अभी नगर से जाकर तेरे लिए मिठाई लाता हूं। छोटा भाई बैठा रहा, बड़ा भाई गया नगर से मिठाई लाया खरीद कर। अभी मिठाई ला रहा था, इतने में उस स्त्री ने कहा कि देखो अधेड़ बून है तुम्हारा भाई, मैं तो झूठ मूठ का बहाना बनाई भूख का, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता, बड़ा भाई के सामने ये तो न्याय विरुद्ध है। बोला देख तू शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे मरवा डालूंगी। बोला ऐसे हो ही नहीं सकता। बहुत उसको हाव भाव भंगिमा से प्रयास किया, विचलित नहीं हुआ। अंत में शाम दाम दंड भी दिखाई फिर भी नहीं। कहा उस स्त्री ने कहा अच्छी बात है, मैं तुझे जरूर मरवाऊंगी, तू हमारे प्रस्ताव को नहीं माना। जब उदय से उसका भाई आ रहा था, साड़ी फाड़ कर मिट्टी में लेट गई। बोले ये क्या, ये तुम्हारा भाई जबरन जो है ना मुझसे ब्याह करना चाहता था, वो तो किसी तरह से मैं बची। मैं तो आपसे ब्याह करना चाहती हूँ, पर ये तुम्हारे भाई की नजर ठीक नहीं। बस तलवार उठा लिया। बोला कि अबे तू भाई है, तेरे लिए पत्नी माँ के समान है। उसने कहा भैया हम कुछ नहीं किए, ये नाटक सब कर रहे, इस पर भरोसा मत करो, चलो अपने नगर को चलते हैं। बोले बहाना बनाता है। छोटा भाई ने कहा बहाना नहीं, सही कह रहा हूँ, स्त्री पे भरोसा नहीं करना, बहुत खतरनाक, ये सब झूठ बनाकर बहाना बना के बोल रही। बस बहुत समझाया पर बड़ा भाई नहीं माना। अंत में ये भी क्षत्रिय था, दोनों के तलवार निकल गई, दोनों लड़ मरे। स्त्री वहां से फिर आगे बढ़ी, हाँ दोनों को मरवा दिया। अब आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद क्या देख रहे हैं कि वही स्त्री कुछ दूर चलने के बाद सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। राजा ने सोचा ये क्या चक्कर है, कभी भालू बन गया, कभी सांप, कभी स्त्री, कभी कुछ कभी कुछ। अब सोचे अब अच्छा मौका पूछने का है। गए नमस्कार किए, ब्राह्मण देवता आप कौन है? बोले मैं कौन, तुझे क्या करना, तू इस नगर का राजा है ना, और तू हमारा पीछा करके देख रहा मैं कौन? बोले हाँ मैं रात से आपके पीछे हूँ, देख रहा हूँ आपकी सारी लीला। बोले मैं कालो काल महाकाल हूँ। राजा ने पूछा कि आपने सोते आदमी को मारा, देखा मैं, फिर आप भालू बनकर लोगों को बचाया, फिर जो है स्त्री बनकर दो भाइयों को मरवा दिया, सांप बनकर नाव को पलटवा दिया, तो आखिर कौन? बोले मैं महाकाल। इस सब मरते हैं अपनी मौत से, परंतु मैं तो निमित्त बन जाता हूं। मैंने तेरे आंख को खोलने के लिए थोड़ा सा लीला दिखाया, तब विक्रमादित्य को विवेक हुआ कि सब वही परमात्मा कालों का काल महाकाल है। लोग कहते सांप आया नाव पलट गई, है ना। लोग कहते हैं कि आपस में राग द्वेष से लड़ मरे, पर कुछ नहीं, हर घटना के पीछे उस परमात्मा चैतन्य ही है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक पत्ता भी ईश्वर के सत्ता के बिना डोल नहीं सकता, पर इतना भरोसा होना चाहिए, इतना दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो जाए कि जगत का अधिष्ठाता एक परमात्मा ही है, फिर जो है संसार से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए कह रहे वही काल है, वही अग्नि है, सचंद्रमा। अग्नि मतलब बाह्य और अभ्यंतर, वैश्वानर रूप से हमारे पेट के अंदर है, जो चार प्रकार के अन्नों को पकाता है, और वही बाह्य अग्नि है, पार्थिव अग्नि। तो उस परमात्मा के विशेष स्वरूप का यहां पर वर्णन किया। अब आगे चलते हैं, आठवां हो गया, नौवां मंत्र। सैव सर्वं यद्भूतम् यच्च भव्यं सनातनम् ज्ञात्वा तं मृत्युमत्तेति न नान्यः पन्था विमुक्तये सैव सर्वं यद्भूतम् यच्च भव्यं सनातनम् ज्ञात्वा तं ऋतुमतेति नान्यः पन्था विमुक्तये सैव सर्वम्। वही परमात्मा सभी रूप में स्थित है। अब सभी रूप में क्या, कायद भूतम यच्च भव्यम सनातनम, जो भूत जो पहले हो चुका, भव्यम जो होने वाला, और यच्च जो वर्तमान है। यत मतलब वर्तमान, भूत मतलब बीत चुका, भव्य मतलब होने वाला, जो सनातन है। तीनों काल में जो भी चीज है वह सब कुछ परमात्मा ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। ज्ञात्वा तम, उस परमात्मा को जानकर, मृत्युम अत्येति, मौत से छुटकारा मिल जाता है। नान्यः पन्था विमुक्तये, उस परमात्मा को जानने का इससे भिन्न दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। श्रुति मेरे जगह आया था शायद, कहीं आया है, है? वाम देवी के अनुभव का चित्रण किया है कि सर्वात्म भाव का गर्भे एव सयान, गर्भ में सोते हुए ही अनुभव किया। क्या अनुभव किया? अहम् ब्रह्मास्मि तस्मात् सर्वम् अभवत्। यो यो देवानां प्रतिबुध्यत स एव तद् अभवत्। तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्ध एतत् पश्यन् ऐसी वाम देवः प्रतिपेदे। अहम् मनुर् अभवम् सूर्यश्च एते। ऋषि वाम देव गर्भे शयान, अभी गर्भ में थे, मां के गर्भ में, मां के गर्भ में ही उन्हें जन्मांतर के संस्कार से ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हुआ? अहम् ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जन्मांतर के कुछ ऐसे प्रतिबंधक थे कि गर्भ में आते ही वे प्रतिबंधक दूर हो गए। इसीलिए गर्भ में वाम देव जी को ज्ञान हो गया कि अहम् ब्रह्मास्मि। अष्टावक्र की कहानी ऐसे ही आती, हाँ। मां के गर्भ में थे और पिताजी जरा कुछ वेद का उच्चारण जो है ना, कुछ मतलब त्रुटि कर रहे थे, उदात अंदाज स्वरित में कुछ भंग हो रहा था। तो गर्भ से अष्टावक्र बोल पड़े, पिताजी ऐसा नहीं, ऐसा उदात पढ़ो, इसको अनुदात पढ़ो। घरे ये अभी गर्भ में है, अभी बाहर नहीं निकला, इतना टेढ़ा। बोले जा आठ अंग से तू टेढ़ा हो जा, साहब ले दिए। क्योंकि उनके दादाजी का संस्कार था, हाँ, दादाजी वेदोच्चारण करते थे, तो गर्भस्थ अष्टावक्र जी को अच्छी तरह उसका ज्ञान हो गया था। तो पिताजी के त्रुटि को जब निकालने लगे तो पिताजी को बड़ा क्रोध आ गया, श्राप दे दी, आठ अंग से टेढ़ा हो गया। तो वास्तव में गर्भ में भी बहुत कुछ संस्कार पड़ जाते हैं। इसे गर्भस्थ माताओं के लिए बहुत सारे नियम होते हैं कि शास्त्र श्रवण करना, सात्विक माहौल में रहना, सात्विक चिंतन करना, कहीं भूल कर क्रोध नहीं करना, मन को हमेशा शांत रखना, ये सब विधान। वो कुछ नौ महीने तक जो मां सदाचार का पालन करती है उसका गर्भस्थ बालक पर सौ वर्ष तक असर उसका रहता। तो आमदेव ने भी गर्भ में ही अनुभव किया सर्वात्म भाव का। कहने कि जो कोई भी देवताओं में, ऋषियों में, मनुष्यों में, अब आप कहो कि वो तो ऋषि थे वामदेव, हम तो मुंबई के आदमी ठहरे, हमें भला कैसे ज्ञान होगा। तो श्रुति में स्वयं ही कह दिया, श्रुति सर्वज्ञ है,